पृष्ठ संख्या 447। भारतवर्ष में चिश्ती संप्रदाय के ले आने का श्रेय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी को है। उनका जन्म संजर शहर में, जो सिस्तान में है, सन 1142 ईस्वी में हुआ। सिस्तान अफगानिस्तान का एक दक्षिणी प्रांत है। बाद में अपने माँ बाप के साथ वे खुरासान चले गए और उसके बाद मेशेद के पास निशापुर के निकट गए। वहीं पर वे ख्वाजा उस्मान चिश्ती हारूनी या हरवानी के शिष्य हुए। जिस परिवार में इनका जन्म पृष्ठ संख्या 448 हुआ था, वह कई पुस्तकों से सूफी साधना से प्रभावित था। इसका प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ा। इनके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन उस समय हुआ जब शेख इब्राहिम कंदोजी नामक एक तेजस्वी साधक के वे संस्पर्श में आए। कहा जाता है कि शेख इब्राहिम कंदोजी की इन्होंने बड़ी आवभगत की, जिससे प्रसन्न होकर उसने इनके अंतर में आध्यात्मिक परिवर्तन ला दिए। शेख ने रोटी का एक टुकड़ा मुंह में रखकर चबाया और उसे ही मोइनुद्दीन को खाने के लिए दिया। इसी से मोइनुद्दीन को ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति, फलों का एक बगीचा और चक्की का पाठ बेच दी और उससे जो कुछ भी उन्हें मिला उसे गरीबों में बांट दिया। संसार त्याग करने पर मोइनुद्दीन गुरु की खोज में भटकते रहे। समरकंद में 2 वर्षों तक उन्होंने कुरान का अध्ययन किया और फिर बुखारा चले गए। वहाँ पर उन्होंने मौलाना हिसामुद्दीन बुखारी से कुरान पढ़ा। अंत में वे ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य हुए। हारूनी के साथ इन्होंने अपना समय बिताया। कुछ लोगों का कहना है कि 20 वर्षों तक वे उनके साथ रहे। इंडी ई पृष्ठ 118। इसके बाद कहते हैं कि सपने में हजरत मोहम्मद ने उन्हें भारत वर्ष में जाकर इस्लाम धर्म के प्रचार का आदेश दिया। कहा जाता है कि निशापुर से जब वे भारत वर्ष के लिए चले, तब रास्ते में बहुत से सुप्रसिद्ध साधकों से मिलने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन साधकों की सत्संगति से उन्हें पूरी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुई। पहले वे बगदाद में आए, वहाँ पर कादिरी संप्रदाय के प्रवर्तक अब्दुल कादिर जिलानी से मिले। वहीं पर सुहरावर्दी संप्रदाय के प्रवर्तक अबू नजीब सुहरावर्दी और उनके उत्तराधिकारी तथा पुत्र शिहाबुद्दीन से मिले। उनकी यह यात्रा मक्का मदीना से शुरू हुई थी और इराक तथा पर्सिया होते हुए वे आगे बढ़े थे। हमदान में उनकी मुलाकात शेख अबू यूसुफ हमदानी से हुई और तबरीज में वे अबू सईद तबरीजी से मिले। मौलाना जलालुद्दीन पृष्ठ संख्या 449 रूमी तबरीजी के ही शिष्य थे। इस्फहान में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से मोइनुद्दीन की भेंट हुई। काकी इनके शिष्य हो गए और भारत वर्ष में आकर उनके उत्तराधिकारी हुए। ये भी एक बहुत बड़े संत हुए। इस प्रकार से रास्ते में बहुत से सूफी साधकों से मिलते हुए तथा बहुत से सूफी साधकों के मकबरों का दर्शन करते हुए मोइनुद्दीन सब्जवार पहुँचे और यहीं पर प्रथम उनकी आध्यात्मिक शक्ति का लोगों को परिचय प्राप्त हुआ। सब्जवार का शासक मोहम्मद यादगार नाम का व्यक्ति था। वह बहुत ही दुष्ट प्रकृति का था और अत्याचार द्वारा उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। मोइनुद्दीन उसी ओर से होकर जा रहे थे और कुछ ऐसा हुआ कि वह उसके बगीचे में आ निकले। उसी बाग में एक तालाब के किनारे आराम करने के लिए उन्होंने अपनी दरी बिछा दी। यादगार के नौकरों ने उन्हें मना किया और बतलाया कि उनका मालिक उनके साथ दुर्व्यवहार कर सकता है, लेकिन मोइनुद्दीन ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। कहा जाता है कि जब यादगार आया तब वह बड़े औद्धत्य के साथ उनकी ओर बढ़ा, लेकिन जब मोइनुद्दीन की दृष्टि उस पर पड़ी वह रुक गया। इतना ही नहीं, उस दृष्टि का फल यह हुआ कि वह भय के मारे कांपने लगा तथा उसे अपने किए हुए पापों का ज्ञान हुआ। वह मोइनुद्दीन के पैरों पर गिर पड़ा और अपना शिष्य बना लेने के लिए कहा। मोइनुद्दीन ने एक गिलास पानी में आधा पी लिया और आधा उसे पीने को दिया और इस तरह से अपनी आध्यात्मिक शक्ति का कुछ अंश उसमें चले जाने दिया। यादगार ने अपनी सारी संपत्ति बेच दी तथा अपने गुलामों को स्वतंत्र कर दिया। संपत्ति बेचकर उन लोगों को हर्जाना दिया जिनके साथ उसने अत्याचार किया था अथवा जिसकी संपत्ति उसने ले ली थी। अंत में जो कुछ बचा उसे गरीबों में बांट दिया और मोइनुद्दीन के साथ हिसार शादमान तक आया, जहाँ पर मोइनुद्दीन ने उसे रहने के लिए कहा और दूसरों को साधना पद पर लगाने का आदेश दिया। इस तरह से अपनी यात्रा में हेरात, बल्ख और गजनी तक वह पहुंचा। इस बीच उसने बहुत से पृष्ठ संख्या 450 साधकों के दर्शन किए। बहुतों को आध्यात्मिक मार्ग पर लगाया, बहुतों को इस्लाम धर्म में दीक्षित किया और बहुत स्थान में अपने चमत्कारों का प्रदर्शन किया। सन 1192 ईस्वी में शहाबुद्दीन गोरी की फौजों के साथ मोइनुद्दीन दिल्ली आए। दिल्ली में वे कुछ काल तक ठहरे। इसके बाद सन 1195 ईस्वी में अजमेर आए और वहीं स्थायी रूप से रह गए। इंडी ई पृष्ठ 118। अजमेर में ही उनकी मृत्यु हुई। अजमेर में उनका मकबरा मुसलमानों और हिंदुओं के लिए एक तीर्थ स्थान बन गया। सालाना उर्स के समय वहां पूरी धूमधाम होती है। अजमेर में उनके आने के काल को लेकर बहुत बड़ा मतभेद है। कहा जाता है कि दिल्ली में आने के पहले वे लाहौर में ठहरे थे और दातागंज बख्श के मकबरे के पास बैठकर ध्यान चिंतन किया था। सन 1165-66 ईस्वी में उनके अजमेर में आने की बात कही जाती है। सूफी पृष्ठ 200। ख्वाजा मुइनुद्दीन की मृत्यु सन 1236 ईस्वी में हुई। अजमेर में रहते समय उनके चमत्कारों की बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं। उन कहानियों से पता चलता है कि वे कितने लोकप्रिय थे और मुसलमान के श्रद्धा की दृष्टि से उन्हें देखते थे। अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह पर लाखों मुसलमान तीर्थ करने आते हैं। संसार भर के चिश्ती संप्रदाय वालों के लिए तो वह मक्का सदृश हो गया है। दातागंज बख्श के मकबरे के पास कुछ समय जो उन्होंने बिताया था वह भी बाद में पवित्र माना जाने लगा। आज भी उस स्थान को लोग स्मरण रखे हुए हैं। ख्वाजा साहब की दरगाह की मस्जिद अकबर बादशाह की बनवाई हुई थी। सम्राट अकबर साल में एक बार वहाँ जाया करता था। पृष्ठ 181। अकबर ने वहां पर एक राजमहल भी बनवा दिया था। कहा जाता है कि पृष्ठ संख्या 451 दो बार उसने मन्नत की थी जिसके फलस्वरूप उसे वहां जाना पड़ता था। कहा जाता है कि अकबर पैदल वहां तीर्थ किया करता था। पृष्ठ 142। एक बार उसने यह प्रतिज्ञा की कि अगर वह चित्तौड़गढ़ को जीत लेगा तो आगरा से पैदल मकबरे के दर्शन के लिए जाएगा। सन 1568 ईस्वी में जब चित्तौड़ पर उसने कब्जा किया तब उसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। जहांगीर के जन्म के समय सन 1567 ईस्वी में मकबरे के दर्शन की उसने प्रतिज्ञा की और लगातार 10 वर्षों तक साल भर में एक बार वहां जाया करता था। संभवतः 1579 ईस्वी में अंतिम बार वह वहां गया था। इंडी ई पृष्ठ 119। उर्स के समय दो बड़े बड़े कड़ाहों में भात रखा रहता है और जो चाहते हैं उन्हें उसमें से थोड़ा थोड़ा दिया जाता है। अजमेर में रहते हुए उनकी आध्यात्मिक शक्ति संबंधी नाना प्रकार की कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि अजमेर में जब वे आए तो राजा पृथ्वीराज को अच्छा नहीं मालूम हुआ। राजा उनको वहां रहने नहीं देना चाहता था। मुइनुद्दीन तथा राजा के जादूगरों के बीच कितनी लड़ाइयां हुई इसके संबंध में नाना कहानियां प्रचलित हैं। जब वे शहर में प्रथम संध्या समय आए तो एक ऐसे स्थान पर उन्होंने आश्रय लेना चाहा जहां राजा के ऊंट रखे जाते थे। ऊंटवाहों ने उन्हें भगा दिया। तब उन्होंने अनासागर झील के किनारे एक पेड़ के नीचे आसन जमाया और श्राप दिया कि ऊंट जमीन छोड़कर खड़े नहीं हो सकते। भोर में जब ऊंटवाहों ने यह देखा तब उनसे माफी मांगी और ऊंट फिर खड़े हो गए। इस कहानी का प्रचार सर्वत्र हो गया लेकिन राजा को यह अत्यंत बुरा लगा और उन्हें उसने भगा देना चाहा। जब कुछ सैनिक उन्हें भगाने आए तो उन्होंने उन पर थोड़ी धूल फेंक दी और वे सभी दृष्टि शक्ति से विहीन हो गए। उन लोगों ने माफी मांगी और इस्लाम धर्म कबूल कर लेने का वादा किया तो फिर मुइनुद्दीन की शक्ति से उन्हें दृष्टि मिल गई। पृष्ठ संख्या 452। राजा पृथ्वीराज के भेजे हुए राजगुरु रामदेव बहुत से पंडितों के साथ मुइनुद्दीन से शास्त्रार्थ करने आए लेकिन संत की दृष्टि जैसे ही उन पर पड़ी वे पराभूत हो गए। वे मुसलमान हो गए। मुइनुद्दीन ने एक प्याले का पानी पीकर उन्हें पीने के लिए दिया। पीते ही जैसे रामदेव को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। उनका नाम शादी देव पड़ा। देव का ठीक अर्थ ना समझकर लोगों ने भ्रमवश उसका अर्थ दुष्ट प्रकृति का प्रेत लगाया। अतएव अब भी जब सालाना उर्स होता है तो लोग भूत भगाने के लिए उनका स्मरण करते हैं। जयपाल योगी जो राजा पृथ्वीराज के दरबार में रहता था मुइनुद्दीन को जादू विद्या से हराने के लिए भेजा गया। इन कहानियों में तथ्य चाहे जितना हो लेकिन इससे उस काल के विश्वासों का एक परिचय अवश्य मिलता है। कहा जाता है कि जयपाल योगी ने अनासागर पर अपनी अदृश्य शक्ति के बल से कब्जा कर लिया। जयपाल ने ऐसा इसलिए किया कि मुइनुद्दीन को वजू करने के लिए जल ही न मिले। वजू नहीं करने के कारण उनकी प्रार्थना में बल नहीं रहेगा और इस प्रकार से वे जादू के प्रभाव को रोक नहीं सकेंगे। मुइनुद्दीन ने शादी देव को भेजकर उस झील से किसी तरह से एक बाल्टी जल मंगवाया। इसका फल यह हुआ कि अजमेर के सभी कुएं और जलाशय सूख गए और लोग पानी के बिना अत्यंत कष्ट भोगने लगे। तब जयपाल ने मुइनुद्दीन से जाकर कहा कि तुम धर्मात्मा बनते हो और लोगों को जल के बिना मार रहे हो। तब मुइनुद्दीन ने बाल्टी का जल फिर उसी झील में डलवा दिया और फिर सब जगह जल ही जल हो गया। सभी कुओं और जलाशयों में पानी आ गया। जयपाल ने जादू के बल से सांप बिच्छू बाघ सिंह आदि को मुइनुद्दीन पर चारों ओर से हमला करने के लिए भेजा। मुइनुद्दीन ने अपने और अपने साथियों के चारों ओर एक गोल रेखा खींच दी। कोई भी जंतु उसके भीतर प्रवेश नहीं कर सका। तब जयपाल ने आग की लपटें भेजी। सभी पेड़ जलकर राख हो गए लेकिन उस गोल रेखा के भीतर आग नहीं जा सकी। पृष्ठ संख्या 453। तब जयपाल योगी अपने मृगछाला पर आकाश में उड़ने लगा, लेकिन मुइनुद्दीन ने अपने मंत्र बल से उसे नीचे उतार दिया। अंत में जयपाल ने हार मान ली, वह मुसलमान हो गया और उसका नाम अब्दुल्ला पड़ा। कहा जाता है कि मुइनुद्दीन ने उससे प्रार्थना की कि वह कयामत के दिन तक जीवित रहे, इसलिए लोगों का विश्वास है कि वह आज भी जीवित है और जो लोग अजमेर में भूल भटक जाते हैं या किसी विपत्ति में पड़ जाते हैं उन्हें वह सहायता करता है। लोगों का विश्वास है कि वह अजमेर के पास जंगलों में झाड़ों में रहता है, इसलिए लोग उसे अब्दुल्ला बया वाणी कहकर पुकारते हैं। कहा जाता है कि उसी के श्राप से पृथ्वीराज की पराजय हुई और वह मोहम्मद गोरी के हाथों कैद हुआ। लोगों का कहना है कि इसलिए गोरी उनके दर्शन के लिए गया और एक मंदिर को 2.5 दिन में मस्जिद के रूप में परिणत कर दिया, इसलिए उसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। मुइनुद्दीन की 2 शादियां हुई थीं। बहुत उम्र होने तक वे अविवाहित ही रहे। उनकी पहली पत्नी का नाम उम्मतुल्ला था। उसे एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम बीबी हाफिज जमाल है। वह भी साधक थी। उसे मुइनुद्दीन ने बाद में शिष्य बनाने का अधिकार दिया। इस्लाम धर्म में ऐसी बहुत ही कम स्त्रियां हुई हैं जिनको यह अधिकार प्राप्त था। उनकी दूसरी पत्नी का नाम असमतुल्ला था। उसे 3 पुत्र हुए। हिसामुद्दीन पहला था जो बचपन में ही अदृश्य हो गया। दूसरा फखरुद्दीन था। वह खेती करता था और पिता की मृत्यु के 20 वर्षों बाद मरा। तीसरा अबू सईद अजमेर में ही रहता था। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का जीवन वृत्त जान ए सुभान ने अपनी पुस्तक सूफिज्म पृष्ठ 193-208 में पूरे ब्यौरे के साथ दिया है। चिश्ती संप्रदाय अत्यंत ही लोकप्रिय रहा है। मुइनुद्दीन के शिष्यों में बड़े बड़े संत हुए हैं। चिश्ती संप्रदाय के कुछ संतों के संबंध में संक्षेप में पृष्ठ संख्या 454 थोड़ी सी जानकारी कर लेना आवश्यक है। उनके बहुत से तीर्थ स्थान भी हैं। संतों के मकबरों के दर्शन के लिए लोग जाते हैं। सभी संतों और तीर्थ स्थानों का नाम देना संभव नहीं है। ग्लॉसरी ऑफ पंजाब ट्राइब्स एंड कास्ट नामक प्रथम खंड में तथा जान ए सुभान की सूफिज्म नामक पुस्तक में इसकी विस्तार से चर्चा की गई है। यहाँ पर चिश्तियों के वंश वृक्ष कुछ प्रमुख साधकों तथा कुछ तीर्थ स्थानों का जिक्र मात्र करके ही हमें संतोष करना पड़ेगा। चिश्ती संप्रदाय का वंश वृक्ष निम्नलिखित है। ग्लो पंड्रा का खंड 1 पृष्ठ 527। अजमेर के संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, इनसे ख्वाजा कुतुबुद्दीन, दिल्ली के कुतुब साहिब, इनसे शेख फरीदुद्दीन, शकरगंज पाक पत्तन के सुप्रसिद्ध बाबा फरीद, इनसे पीरा कलीर, रुड़की के पास के हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर, साबिरी संप्रदाय के प्रवर्तक और हजरत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली आदि निजामी संप्रदाय के प्रवर्तक, साबिरी संप्रदाय के पानीपत के शेख शमसुद्दीन तुर्क, इनसे पानीपत के शाह विलायत शाह जलालुद्दीन, इनसे रदौली यूपी के शेख अब्दुल हक पृष्ठ संख्या 455, इनसे शेख आरिफ साहिब, इनसे शेख मोहम्मद साहिब, इनसे शेख अब्दुल कुद्दूस साहिब गंगोह के कुतुब, इनसे थानेसर के शेख जलालुद्दीन, इनसे बल्ख अफगानिस्तान के शेख निजामुद्दीन, इनसे गंगोह यूपी के शेख अबू सईद, इनसे गंगोह के शेख मोहम्मद सादिक, इनसे गंगोह के दाऊद साहिब, उनसे शाह अब्दुल मयाली और उनसे हजरत मीरान सैयद शाह हबीक मीरान साहिब के नाम से प्रख्यात हैं, जिनका मकबरा पटियाला राज्य के घुरम स्थान में है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के उत्तराधिकारी ख्वाजा कुतुबुद्दीन हुए। ये अत्यंत लोकप्रिय थे और बादशाह अल्तमश उन पर खूब श्रद्धा रखता था। उनके साथ 2 नाम और जुड़े हुए हैं। बख्तियार भाग्य का बंधु नाम मुइनुद्दीन का दिया हुआ था और काकी रोटियों वाला आदमी नाम के साथ एक कहानी जुड़ी हुई है। वैसे उस पर कहाँ तक विश्वास किया जा सकता है यह कठिन है। कहा जाता है कि पृष्ठ संख्या 456, एक बार वे अपने कुछ मित्रों के साथ दिल्ली में एक तालाब जो समसिया नाम से मशहूर है के पास बैठे हुए थे। मित्रों ने कहा कि वे गरम गरम रोटियां खाना चाहते हैं। उन्होंने तालाब में हाथ डुबा डुबा कर उनकी मनचाही रोटियां दे दी और तभी उनका नाम काकी पड़ा। चाहे जो हो, निश्चित रूप से यह कहना कठिन है कि कैसे उनका यह नाम पड़ा। उनका जन्म सन 1186 में इस्फहान के फरगना स्थान में हुआ। किसी किसी ने उनका जन्मस्थान बगदाद के पास उश्की बतलाया है। इंडी ई पृष्ठ 30। उनकी मृत्यु सन 1237 में दिल्ली में हुई। कुतुब मीनार के पास उनकी कब्र है। कहा जाता है कि उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया। वे बहुत बड़े संत थे और कहा जाता है कि उनका जन्म जिस समय हुआ उस समय बहुत सी विचित्र घटनाएं घटीं। उनके नाम के साथ तरह तरह की कहानियां जुड़ी हुई हैं। बाद में उनके शिष्यों ने उन्हें और भी अधिक रहस्यमय और ऊंचा बनाने के लिए ये कहानियां गढ़ी होंगी। कहा जाता है कि जिस रात में उनका जन्म हुआ उस रात को संपूर्ण मकान एक अद्भुत आलोक से आलोकित हो गया। जन्म लेने के साथ ही साथ उन्होंने प्रार्थना में अपना सिर झुका दिया और भोर तक जिक्र का उच्चारण करते रहे। कहा जाता है कि वे पैगंबर के वंश के थे। वंश वृक्ष में हजरत अली के पुत्र हुसैन से 16वें स्थान पर उनका नाम आता है। सूफी साधना की ओर उनकी प्रवृत्ति जन्मजात थी। यह प्रवृत्ति उन्होंने वंश परंपरा से पाई थी। उनकी माँ अत्यंत धार्मिक थी और कहा जाता है कि आधा कुरान उन्हें मुखस्त था। अनेकों सूफी साधकों से उन्होंने सूफी साधना की शिक्षा ली थी। कहा जाता है कि शहाबुद्दीन सुहरावर्दी से भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। बगदाद में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के संपर्क में वे आए और उनका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन भारतवर्ष आते समय शहाबुद्दीन सुहरावर्दी और अब्दुल कादिर जिलानी का नाम सुनकर बगदाद गए थे। पृष्ठ संख्या 457। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेर में आकर रह गए तब कुतुबुद्दीन बगदाद से भारतवर्ष के लिए रवाना हुए। मोइनुद्दीन की तरह वे भी बहुत से संतों और संतों के मकबरों का रास्ते में दर्शन करते आए। भारतवर्ष में आने के पहले से ही वे प्रसिद्धि लाभ कर चुके थे और उनके गुरु मोइनुद्दीन की ख्याति चारों ओर फैल चुकी थी। अतएव रास्ते में सभी लोगों ने उनका खूब सम्मान किया। वे मुल्तान में आकर कुछ समय के लिए ठहर गए। वहां पर सुहरावर्दी संप्रदाय के दो बड़े संत बहाउद्दीन जकरिया और जलालुद्दीन तबरीजी की सत्संगति का उन्हें अवसर मिला। वे जब दिल्ली आए तो बादशाह तथा लोगों की ओर से उनके प्रति बहुत बड़ा सम्मान प्रदर्शित किया गया तथा सब लोगों ने उनसे दिल्ली में रहने का आग्रह किया। मोइनुद्दीन की अनुमति पाकर वे वहीं रह गए। अलतमश पर चिश्ती संप्रदाय का बहुत प्रभाव था। उसने कुतुबुद्दीन को काजी का पद देना चाहा लेकिन कुतुबुद्दीन ने इनकार कर दिया। इसके बाद नजमुद्दीन सुगर को काजी नियुक्त किया गया। नजमुद्दीन भी सुइनुद्दीन के अंतरंग मित्रों में थे। पहले तो नजमुद्दीन और कुतुबुद्दीन मित्र थे लेकिन जब नजमुद्दीन प्रधान काजी से शेखुल इस्लाम बने तो उन्हें कुतुबुद्दीन की लोकप्रियता अखरने लगी। उन्होंने सभी प्रकार के उपाय किए जिसमें कुतुबुद्दीन को नीचा देखना पड़े लेकिन वे इसमें असफल रहे। एक बार जब मोइनुद्दीन दिल्ली आए तो नजमुद्दीन ने कुतुबुद्दीन की शिकायत की। मोइनुद्दीन ने अपने प्रिय शिष्य के लिए बड़ी चिंता हुई और उन्होंने कुतुबुद्दीन को अपने साथ अजमेर जाने के लिए कहा। कुतुबुद्दीन जब मोइनुद्दीन के साथ दिल्ली से बाहर हो रहे थे तब बादशाह और दिल्ली की जनता रोती हुई उन्हें लौटाने के लिए आई। अंत में मोइनुद्दीन ने भगवान के भरोसे कुतुबुद्दीन को दिल्ली लौट जाने का आदेश दिया। कुतुबुद्दीन की लोकप्रियता का इससे पता चलता है। कुतुबुद्दीन इतने बड़े साधक माने जाते थे और लोग इस प्रकार से उन्हें आध्यात्मिक शक्ति संपन्न मानते थे कि दूसरे संप्रदाय के प्रमुख साधक भी उनके शिष्य हो गए। पृष्ठ संख्या 458 और चिश्ती संप्रदाय में अंतर्भुक्त हो गए। शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के शिष्य नागौर के हमीदुद्दीन जिनकी मृत्यु सन 1289 ईस्वी में हुई भारतवर्ष में शिहाबुद्दीन के खलीफा नियुक्त होकर आए थे लेकिन यहाँ कुतुबुद्दीन के शिष्य हो गए। शेख जलालुद्दीन तबरीजी शिहाबुद्दीन के साथ 7 वर्षों तक थे लेकिन वे भी कुतुबुद्दीन के शिष्य बन गए। सूफी पृष्ठ 228। कुतुबुद्दीन के उत्तराधिकारी फरीदुद्दीन मसऊद शकरगंज हुए। ये बहुत नामों से प्रसिद्ध हैं लेकिन इनका विख्यात नाम पाक पत्तन के बाबा फरीद ही है। भारतवर्ष में प्रायः सर्वत्र लोग इनका नाम जानते हैं। ये एक बहुत बड़े साधक हुए और संभवतः शारीरिक कष्ट साधन जितना इन्होंने किया उतना और किसी सूफी साधक ने नहीं किया होगा। इसका अनुमान इसी से किया जा सकता है कि लगातार 40 रात इन्होंने कुएं में उल्टा लटक कर प्रार्थना की थी। उन्होंने उच्च की एक मस्जिद में एक ऐसी एकांत जगह खोज निकाली थी जहां उन्हें कोई देख नहीं पाता था। उनकी मस्जिद का मुअज्जिन उनके पैरों को प्रत्येक रात में आकर बांधता और उन्हें लटका जाता और नमाज पढ़ने के लिए जब लोग इकट्ठे होते उसके पहले ही उन्हें वह ऊपर खींच लेता और पैर खोल देता। वही पृष्ठ 217। वे एकांत प्रिय थे और लोगों की भीड़ पसंद नहीं करते थे। लोगों की भीड़ लगने के कारण वे एक स्थान छोड़कर अन्य स्थान पर चले जाते। इस प्रकार से कई स्थान उन्हें बदलने पड़े। बहाउद्दीन जकरिया से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी लेकिन सूफी साधना के लिए उन्हें उन्होंने गुरु नहीं बनाया। कुतुबुद्दीन अल्प दिनों के लिए मुल्तान में आए। उसी समय फरीदुद्दीन उनके संपर्क में आए और उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। उस समय उनकी अवस्था 17 वर्ष की थी। अपने गुरु के साथ वे दिल्ली आए लेकिन लोगों की भीड़ लगने के कारण कुतुबुद्दीन की आज्ञा लेकर वे पृष्ठ संख्या 459 दिल्ली से हासी चले गए। वहां भी लोगों ने भीड़ लगाना नहीं छोड़ा। आते उस स्थान को भी छोड़कर वे अयोध्या चले गए और वहां बहुत दिनों तक रहे। जीवन के अंतिम 16 वर्ष उन्होंने मुल्तान के कटवाल स्थान में बिताए। सन 1266 ईस्वी में उनकी मृत्यु पाक पत्तन पंजाब में हुई। उनके उर्स के समय वहाँ बहुत बड़ी भीड़ होती है, जिसमें हिंदू मुसलमान सभी शामिल होते हैं। यह उर्स मुहर्रम महीने की 5वीं तारीख को होता है। वहाँ पर एक स्वर्ग का दरवाजा है, जिसकी कुंजी एक ब्राह्मण के पास रहती है। दर पृष्ठ 217। यद्यपि वह दरवाजा कुछ वैसा तंग नहीं है, फिर भी इससे पार होने के लिए लोग अत्यधिक भीड़ करते हैं और धक्कम धुक्की में बहुतों की मृत्यु हो जाती है। यह बिहिश्ती दरवाजा उनके मकबरे का एक दरवाजा है, जो केवल उर्स के समय ही खोला जाता है। इसके संबंध में कहा जाता है कि बाबा फरीद के शिष्य निजामुद्दीन उनके मकबरे के पास थे, तो उन्हें मालूम हुआ कि उस दरवाजे के पास मोहम्मद खड़े हुए उनसे कह रहे हैं कि जो उस दरवाजे के भीतर घुसेगा वही बचेगा। सूफी पृष्ठ 219। तभी से उसका नाम स्वर्ग का दरवाजा पड़ा। कहा जाता है कि बाबा फरीद का जन्म मुल्तान जिले के कठवाल शहर में हुआ था। चंगेज खां के आक्रमण करने पर इनके पितामह अपने परिवार के साथ काबुल से भागकर पंजाब चले आए। मुल्तान जिले के कठवाल शहर के वे काजी नियुक्त हुए। वे शकरगंज भी कहलाते हैं। शकरगंज इनके नाम के साथ कैसे जुड़ गया, इसके संबंध में कहा जाता है कि बचपन से ही इनकी माँ नमाज पढ़ने की आदत डालने के लिए नमाज पढ़ने की दरी के नीचे कुछ मिठाइयाँ रख देती, जिसके लालच से वे नमाज पढ़ने जाया करें। एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी माँ मिठाई रखना भूल गई। उस दिन जब उन्होंने दरी उठाई तो देखा कि पृष्ठ संख्या 460 मिठाइयों का स्तूप लगा हुआ है, अतएव इनका नाम शकरकंज मिठाइयों की ढेरी पड़ा। सूफी पृष्ठ 217। कहते हैं कि बुढ़ापे में उन्होंने शादी की थी। उनके 6 लड़के और 4 लड़कियां थीं। सबसे बड़े पुत्र शेख बदरुद्दीन सुलेमान एक सूफी साधक थे। उनकी सबसे छोटी लड़की की शादी अली अहमद साबिर से हुई थी, जो उनके प्रधान शिष्य थे और साबिरी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। अली अहमद उनके अपने भांजे थे। कहा जाता है कि इनके 3 पत्नियां थीं। पहली पत्नी दिल्ली के बादशाह बलबन की पुत्री थी, उसका नाम हुजैरा था। बाद में उन्होंने हुजैरा के साथ आई हुई 2 दासियों के साथ भी शादी कर ली। बादशाह ने हुजैरा को खूब धन दिया था और एक राजमहल भी बनवा दिया था, लेकिन उसने अपनी सारी संपत्ति गरीबों को बांट दी और पति के जैसा गरीबी और साधना का जीवन बिताने लगी। चिश्ती संप्रदाय के वंश वृक्ष को देखने से यह पता चलता है कि बाबा फरीद के 2 मुख्य शिष्य दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया तथा हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर थे। चिश्ती संप्रदाय के यहीं से 2 उपसंप्रदाय हो गए, निज़ामुद्दीन औलिया से निज़ामी संप्रदाय और अली अहमद से साबिरी संप्रदाय। ये दोनों संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय के अन्य संप्रदायों की अपेक्षा अत्यधिक लोकप्रिय हैं। जितने अनुयायी इन दोनों संप्रदायों के हैं, उतने अन्य चिश्ती संप्रदाय के नहीं हैं। निज़ामुद्दीन औलिया का वास्तविक नाम मोहम्मद बिन अहमद बिन दानियल अल बुखारी था। वे बदायूं यूपी के निवासी थे। वहीं पर उनका जन्म सन 1238 ईस्वी में हुआ था। वे महबूबे इलाही परमात्मा का प्यारा और सुल्तानुल सूफी पृष्ठ 223 औलियों के सुल्तान तथा सुल्तानुल मशायख पृष्ठ 143 शेखों के सुल्तान नामों से भी पुकारे जाते हैं। पृष्ठ संख्या 461। सन 1325 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई और वे दिल्ली के पास गियासपुर में दफनाए गए। उनकी कब्र के पास उनके और भी अन्य शिष्यों की कब्रें हैं। दूर दूर से यात्री उनके मकबरे का दर्शन करने जाते हैं। उनके शिष्यों में अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी आदि थे। जियाउद्दीन जो विख्यात इतिहासज्ञ हो चुके हैं, उन्हीं के शिष्य थे। अमीर खुसरो फारसी के विख्यात कवि थे और हिंदी में उन्होंने मुकरियां आदि लिखी हैं। उनका जन्म ईसा की 13वीं शताब्दी में एटा में हुआ था। निज़ामुद्दीन के अत्यंत प्रिय शिष्यों में थे। उनकी मृत्यु से अमीर खुसरो इतने अधिक संतप्त हुए कि उसी शोक से उनकी मृत्यु सन 1325 ईस्वी में हो गई। खुसरो को जीवन में नाना आपत्ति विपत्तियों का सामना करना पड़ा था। बलबन, कैकुबाद आदि बादशाहों के राजत्व काल में कभी वे बादशाहों के प्रिय पात्र बने और कभी कोपभाजन हुए। निज़ामुद्दीन बाबा फरीद की ख्याति सुनकर अयोध्या चले गए। बाबा फरीद के अत्यंत प्रिय शिष्यों में वे थे। कुछ ही दिनों में उन्होंने सूफी साधना में अत्यंत सफलता प्राप्त कर ली। बाबा फरीद इनसे इतना प्रभावित थे कि 20 ही वर्ष की उम्र में इन्होंने इनको अपना खलीफा इंडी ई पृष्ठ 119 चुनकर दिल्ली भेज दिया। इस घटना के 7 वर्षों के बाद बाबा फरीद की मृत्यु हुई। वे अत्यंत मातृभक्त थे। इनकी माता ने ही उन्हें पाल पोसकर बड़ा किया था। इनकी उम्र जब 5 वर्ष की थी, तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनकी माता का नाम जुलेखा था। उनकी मृत्यु के बाद भी निज़ामुद्दीन बराबर उनकी कब्र के दर्शन करने जाया करते थे। वे बड़ी धर्मप्राण महिला थी और निज़ामुद्दीन के जीवन पर उनका अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। दिल्ली के बादशाहों की आंखों के ये बराबर कांटे बने रहे। वे अत्यंत लोकप्रिय थे और दूर दूर से लोग इनके दर्शन के लिए आया करते थे। पृष्ठ संख्या 462। बादशाहों को यह बहुत ही खटकता था। दूसरी बात यह थी कि वे कभी भी दरबार में नहीं जाते थे। कहा जाता है कि मुबारक खिलजी दूस का चांद जिस दिन निकलता था उस दिन एक प्रकार का दरबार करता था, जिसमें दरबारी और शहर के अमीर उमरा आते और उस महीने के लिए बादशाह की मंगल कामना करते। निजामुद्दीन कभी नहीं गए, बुलाने पर भी नहीं गए। बादशाह ने एक बार धमकी दी कि दूसरे महीने उस दिन अगर निजामुद्दीन नहीं आए तो उन्हें वह कठोर दंड देगा। कहा जाता है कि निजामुद्दीन अपनी माँ की कब्र के दर्शन करने गए और कहा कि उसके पहले ही अगर बादशाह की मौत नहीं हो जाए तो वे माँ की कब्र के दर्शन करने नहीं आएंगे। कहा जाता है कि बादशाह के एक दास ने जो निम्न श्रेणी का था बादशाह की हत्या कर दी और बादशाह को दूज का चांद देखना नसीब नहीं हुआ। गियासुद्दीन तुगलक उस गुलाम को हटाकर बादशाह बना, लेकिन वह भी निजामुद्दीन से अप्रसन्न ही रहता था। वह सन 1325 ईस्वी में जब बंगाल पर विजय प्राप्त कर लौट रहा था तो उसने खबर भेजी कि निजामुद्दीन दिल्ली छोड़कर चले जाए। इस पर निजामुद्दीन ने कहा, हनोज दिल्ली दूर अस्त, अर्थात दिल्ली अभी भी दूर है। उसके बाद से यह मुहावरा बन गया। कहते हैं कि बादशाह दिल्ली नहीं पहुंच पाया, तुगलकाबाद में ही उसकी मृत्यु हो गई। बादशाह के सम्मान में एक मंडप बना था, वह गिर पड़ा जिसे दबकर बादशाह की मौत हुई। लोगों का कहना है कि इस मृत्यु का कारण राजनीतिक था और कुछ का कहना है कि जिस आदमी की देख रेख में वह बना था वह निजामुद्दीन का बहुत बड़ा भक्त था और उसी ने उसको कमज़ोर बनवाया था। उसी की साजिश से बादशाह की मृत्यु हुई। चिश्ती संप्रदाय की निजामी शाखा भी बाद में दो उप शाखाओं में बट गई, हिसामी और हमजशाही। हिसामी शाखा के प्रवर्तक मानिकपुर के हिसामुद्दीन थे। उनकी मृत्यु सन 1477-78 ईस्वी में हुई। हमजशाही शाखा के प्रवर्तक शेख हमज थे, जो बहाउद्दीन जकरिया के वंशज थे। इस पृष्ठ संख्या 463 शाखा का संबंध निजामुद्दीन औलिया से जोड़ा जाता है। निजामुद्दीन औलिया के खलीफा नसीरुद्दीन मोहम्मद थे। ये चिरागे दिल्ली भी कहलाते हैं। 40 वर्ष की अवस्था में ये निजामुद्दीन के पास आए। इनकी मृत्यु सन 1356 ईस्वी में हुई। इनके बाद इनके बहुत से संत हुए। हमजशाही इस शाखा की संत परंपरा में अपने को बतलाते हैं। नसीरुद्दीन की कब्र चिरागे दिल्ली के नाम से विख्यात है। इसी शाखा में नसीरुद्दीन के बहुत बाद एक शेख संत शेख सलीम चिश्ती हुए। कहा जाता है कि उन्हीं के घर में जहांगीर का जन्म हुआ था। उनकी कब्र फतेहपुर सिकरी में है। नसीरुद्दीन के एक उत्तराधिकारी सईद मीर गेसु दराज भी थे। नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद ये दिल्ली छोड़कर डेक्कन चले गए। वहीं पर सन 1422 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। नसीरुद्दीन और गेसु दराज के जरिए ही हमजशाही अपना संबंध निजामी शाखा से जोड़ते हैं। साबिरी शाखा के प्रवर्तक फरीदुद्दीन शकरगंज के दूसरे शिष्य हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर थे। रुड़की के उत्तर पीना कलीर नामक स्थान पर उनका मकबरा है। उनका जन्म 1197-98 ईस्वी में हेरात में हुआ था और मृत्यु सन 1291 ईस्वी में हुई। मृत्यु के पहले उन्होंने बहुत ख्याति लाभ की। उनके नाम के साथ साबिर संतोषी शब्द कैसे जुड़ गया इसके संबंध में एक कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक दिन बाबा फरीद ने अपने शिष्य अली अहमद को गरीबों को भोजन तथा भिक्षा अपने बदले में देने के लिए कहा। वे लंगर खाने में खड़े होकर रात दिन इस काम पर जुटे रहे, लेकिन स्वयं घर जाकर भोजन बनाने का समय नहीं पा सके। उस काम को छोड़कर वह जाना नहीं चाहते थे। इसके बाद कुछ ही दिनों में वे दुबले हो गए। उनकी मां ने इसका कारण पूछा। उन्होंने कहा कि उनके गुरु ने हुक्म दिया था कि वे दूसरों को भोजन बांटें, लेकिन उन्हें स्वयं भोजन करने का आदेश नहीं दिया था। दूसरे लंगर खाने को छोड़कर वे जा भी नहीं सकते थे, अतएव कई दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया है। इसी से उनका नाम पृष्ठ संख्या 464 साबिर पड़ा। ग्लोब पंट्रा का प्रथम खंड पृष्ठ 530। ये जब 7 वर्ष के थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई। ये अत्यंत ही गरीब थे। बाबा फरीद ने इनका पालन पोषण किया। बाबा फरीद इनके अपने मामा थे। बाद में चलकर ये उनके शिष्य हो गए। बाबा फरीद के आदेशानुसार ये कलियर गए। एक दिन किसी शुक्रवार को वे एक मस्जिद में गए। लोगों ने अपमानित कर उन्हें वहां से निकाल दिया। लोगों का विश्वास है कि इसी वजह से अकस्मात वह मस्जिद गिर पड़ी और बहुत से लोग दबकर मर गए। कलियर में प्लेग फैल गया और वह स्थान वीरान हो गया, वहां जंगल हो गया। उसी एकांत में एक पेड़ के नीचे एक झोपड़ी में अली अहमद अपने शिष्य शमशुद्दीन तुर्क के साथ रहते थे। इस प्रकार से 20 वर्षों तक वे एकांत में रहे। वे संगीत के प्रेमी थे, अत्यंत क्रोधी स्वभाव के थे। कोई उनके सामने जाने का साहस नहीं करता था। उनके शिष्य उनके पीछे से ही भोजन आदि उन्हें दिया करते थे। गाने वाले भय के कारण उनसे दूर ही बैठते थे। चिश्ती संप्रदाय भारत वर्ष में खूब ही लोकप्रिय रहा है और इसका प्रसार इस देश में खूब हुआ। ईसा की 16वीं शताब्दी में चिश्ती संप्रदाय की संत परमात्मा में एक बहुत बड़े साधक हुए जिनका नाम शेख सलीम चिश्ती था। हम यह देख चुके हैं कि जहांगीर का जन्म उन्हीं के घर हुआ था। इसे सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि मुगल बादशाहों में उनका कितना मान था। उन्होंने बादशाह के परिवार को खूब प्रभावित किया था। उनकी मृत्यु सन 1572 ईस्वी में हुई। इनकी मृत्यु के बाद से 200 वर्षों में इस संप्रदाय की अवनति होती गई और ईसा की 18वीं शताब्दी के मध्य तक तो इसका ह्रास चरम तक पहुंच गया। 18वीं शताब्दी के अंत में ख्वाजा नूर मोहम्मद किबलाहे आलम ने पंजाब और सिंध में इसको पुनर्जीवित करने की चेष्टा की। वे एक राजपूत परिवार के थे। इसके बाद का चिश्ती संप्रदाय का जो रूप मिलता है वह कम या बेशी भारतीय है। पृष्ठ संख्या 465। भारतवर्ष में चिश्ती संप्रदाय के बहुत से तीर्थ स्थान हैं। कुछ मुख्य संतों की समाधियां इतनी लोकप्रिय हैं कि वहां मेला लगा करता है। इनमें कुछ के नाम ये हैं। एक, कुतुब साहिब की समाधि दिल्ली में है। इन्होंने अपनी कब्र पर कोई इमारत नहीं बनने दी। दो, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की समाधि भी दिल्ली में है। तीन, बू अली शाह कलंदर करनाल। चार, ख्वाजा शमशुद्दीन चिश्ती साबिरी पानीपत। पाँच, जलालुद्दीन कबीर उल औलिया पानीपत। छः, शाह लखी अम्बाला। सात, शाह भीख मीरानजी ठसक। आठ, मीरानजी थानेसर तहसील। नौ, शेख फरीदुद्दीन पाकपत्तन। दस, अमीर खुसरो नई दिल्ली। ग्यारह, शाह नसीरुद्दीन दिल्ली। बारह, मोहम्मद अरीफ लाहौर। इसी प्रकार से अनेकों हैं, सबका नाम गिनाना यहाँ संभव नहीं है।